الحمد لله كفا. الحمد لله كفا والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. مش ليش عندنا نبي عليه الصلاة والسلام في حديث کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس میں آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھ لو، پانچ چیزوں سے پہلے. تو پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھنے کا فرمایا اللہ کے نبی نے، اور ان میں سے چار چیزوں پہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں پچھلے چند دنوں سے. اس حدیث کے اس حصے پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ مالداری کو غنیمت سمجھ لو فقر سے پہلے. اور اس حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا کہ عام طور پہ دنیا اور مال ان چیزوں کی مذمت قرآن و حدیث میں آئی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے. اس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ جادوگرنی ہے، یہ بندے کو اللہ سے دور کرنے والی چیز. اور پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا بندے سے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی کو پسند کیا، والآخرت خیر وابقى، کہ آخر تو بہتر ہے، آخرت اور زیادہ رہنے والی ہے. تو کیونکہ قرآن اور حدیث میں دنیا اور مال کی مذمت آئی ہے، تو یہ حدیث ایک سوال ضرور اٹھاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس مالداری کی قدر کر لو، اس کو غنیمت سمجھ لو فقر و فاقہ سے پہلے. تم نے مشائخ کا یہ قول نقل کیا کہ یہ مال ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے. اس مال سے انسان فائدے بھی حاصل کر سکتا ہے، دینی دنیاوی فائدے بھی، اور یہ مال انسان کو اللہ سے دور کرنے والی چیز بھی ہے. یہ دونوں چیزیں، یہ مال اللہ سے قریب کرنے والی چیز بھی، یہ مال اللہ سے دور کرنے والی چیز بھی. اسے قریب کیسے کرتی ہے؟ اس مال کے ذریعے سے انسان اپنے فرائض کو پورا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رزق حلال کمانا فرائض میں سے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رزق حلال کمائے گا اس لیے کہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. تو مال سے انسان دینی کام کرتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مال کے بغیر کوئی دینی کام بھی ممکن نہیں ہے. مسجد بنانا ممکن نہیں ہے، مدرسہ بنانا ممکن نہیں ہے، مال کے بغیر حج کرنا ممکن نہیں ہے، زکوٰۃ دینا ممکن نہیں ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی جانا ممکن نہیں ہے. مال تو چاہیے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس مالداری کی قدر کر لو، جہاد ممکن نہیں ہے. فوجیں کہاں تیار ہوتی ہیں مال کے بغیر؟ تو بڑے بڑے دینی کام ہوتے ہی مال سے ہیں، دنیاوی کام بھی مال سے ہوتے. تو مال دو دھاری تلوار ہے، اور دین اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ اگر اس مال کی مذمت قرآن و حدیث میں آئی تو انسان اس دنیا اور اس مال کو چھوڑ کے اس دنیا سے باہر نکل جائے اور جنگلوں میں چلے جائے اور مال سے کوئی تعلق نہ رکھے، بلکہ اس مال کی آزمائش میں آ کے اور اپنے آپ کو اس مال کو صحیح طرح سے استعمال اور صحیح طرح سے کمانے والا بنائے. یہ اصل دین اسلام چاہتا ہے کہ حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقوں پہ لگائے. اور اس زمن میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مال جو ہے یہ ایک سانپ کی مانند ہے، اور اس کا علاج اللہ والوں کے لیے. تو جو اللہ والوں کے پاس آئے گا اس مال میں میانہ روی والا راستہ اختیار کرے گا، माल के फवायद बहुत ज्यादा, मगर माल के नुकसान भी बहुत ज्यादा। और पिछले 2 दिन से हम माल के नुकसान, दो नुकसान बयान कर चुके हैं। और माल का पहला नुकसान यह है कि जब माल फरावानी के साथ इंसान के पास होता है तो गुनाह करना आसान होता है। गुनाह के लिए पैसे चाहिए, शराब के लिए पैसे चाहिए, चरस के लिए पैसे चाहिए, जिना के लिए पैसे चाहिए, तो गुनाह करने के लिए माल चाहिए। माल अगर फरावानी से अवेलेबल है, फिर आप कॉन्सर्ट्स में भी जाते हैं, फिर आप फिल्में देखने में भी जाते हैं, फिर आप मखलूत महफिलों में भी जाते हैं, फिर शराब वाली महफिलों में जाते हैं, फिर फहाशी वाले वेकेशंस भी हो सकते हैं। मतलब यू कैन, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इस माल के साथ। माल नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो माल का एक वबाल तो ये है कि माल की वजह से इंसान बहुत सारे गुनाह करता है, कर सकता है। और कल की मजलिस में हमने इस माल के हवाले से ये बात बयान की कि माल का बड़ा वबाल ये है कि माल की वजह से इंसान के अंदर तकब्बुर आ जाता है और माल वाला अपने आप को बड़ा समझता है, दूसरों को हकारत से देखना शुरू कर देता है। ये माल का सबसे बड़ा वबाल है, हदीस पाक में आता है, ला यदखुलुल जन्ना मन काना फी कल्बिही मिसकाल ज़र्रतिन मिन किब्र। वो शख्स तो जन्नत में ही दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जिसके दिल में राय के दाने के बराबर तकब्बुर हो। ये माल जो है ये तकब्बुर पैदा करता है। और कल की मजलिस में हमने ये भी अर्ज किया कि कुछ लोग कहते हैं कि तकब्बुर एक नेचुरल सी चीज है, इस तकब्बुर को खत्म करना या इस तकब्बुर के खिलाफ बात करना ये एक इन अननेचुरल चीज है। और उसकी दलील लोग ये देते हैं कि जी जाहिर है किसी के पास माल ज्यादा है, वो एक मिलियनेयर है या बिलियनेयर है, तो एक 20,000 25,000 रुपए वाले कमाने वाले शख्स को अपने आप को जाहिर बेहतर ही समझेगा। इसमें क्या है, वो चला भी वही रहा है, उसको तनख्वाह भी वही दे रहा है। या अगर किसी के पास हार्वर्ड की डिग्री है, एक बिल्कुल जाहिल सा बंदा है, वो कैसे अपने आप को उससे बेहतर ना समझे। तो क्यों आप ऐसे लोगों को अननेचुरल चीजों पे लगा रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को उससे भी कम समझे जो बिल्कुल जाहिल है, और एक तरफ दूसरा है जो दुनिया की बेहतरीन तालीमी डिग्री लेके बैठा हुआ है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी माल जो है ये तकब्बुर करना या अपने आप को बड़ा समझना जो है ये कोई ऐसी गलत चीज नहीं है, एक नेचुरल सी चीज है। और कल की मजलिस हमने कहा कि उलमा ने फरमाया कि तकब्बुर करना नेचुरल नहीं बल्कि आजिजी करना नेचुरल है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ईमान वाले हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, तो आजिजी ही नेचुरल चीज है। ईमान का मतलब क्या है, हम यही समझते हैं ना कि हर खैर अल्लाह की तरफ से है और हर जो शर है वो भी अल्लाह की तरफ है। तो जो माल दिया है अल्लाह ने वो भी अल्लाह की तरफ से है, जो डिग्री मिली है बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी की वो भी अल्लाह की तरफ से है, अगर किसी बड़े खानदान में पैदा हो गया तो वो भी अल्लाह की तरफ से है। हत्ता कि अगर तहज्जुद पढ़ते हैं और दूसरे लोग इबादत में कमजोरी रखते हैं तो ये भी अल्लाह की तरफ से है। और ये सारी जो नेमतें हैं ये जब आती हैं तो ये जा भी सकती हैं, और आखिर को इन सारी नेमतों ने जाना है, आखिर को तो हमने भी इस दुनिया से जाना है। तो ये माल क्या, ये वजूद भी बाकी नहीं रहेगा। तो अगर ईमान है तो फिर नेचुरल चीज तकब्बुर नहीं बल्कि नेचुरल चीज जो है वो आजिज़ी ही है। और आज की इस मजलिस में माल से मुताल्लिक एक और बात करना जरूरी, और माल के बवालों में से ये भी बड़ा बवाल है। और ये क्या है, इंसान के पास जब माल आ जाता है तो फिर उसे माल के मुकाबले करने का शौक पैदा हो जाता है। इसके पास ऐसी गाड़ी है तो मेरी गाड़ी इससे बेहतर होनी चाहिए, इसका फोन ऐसा है तो मेरा फोन इससे बेहतर होना चाहिए, इसके कपड़े ऐसे मेरा कपड़े इससे बेहतर होना चाहिए, इसका घर ऐसा, तो ऐसा घर मेरा हो कि किसी के पास ना हो ऐसा घर। और ये ऐसी बात नहीं बीमारी है कि इसका कोई तोड़ नहीं है, एक मरतबा ये लग जाती है अल्लाह। तो कोशिश तो करते हैं उलमा और मशायख इसके ऊपर खूब रोशनी डालने का, मगर जिसको ये बात नहीं बीमारी लग जाती है ना, ये कुरान ने फैसला कर दिया कि फिर ये नहीं छूटती, पर ये माल ही से आती है और कहीं से नहीं है, माल आएगा तो ये चीजें आएंगी। अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुमको गफलत में डालेगा माल का मुकाबला हत्ता कि तुम कब्रों तक चले जाओगे। तो कुरान कह रहा है कि कब्रों तक जान तक ये जान नहीं छूटनी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हरीस शख्स होता ये माल की शौक और माल का मुकाबला, जो हरीस शख्स है उसको एक पहाड़ सोने का मिल जाए तो उसको फिर भी सुकून नहीं आएगा, वही कहेगा एक और पहाड़ ऐसा और मिल जाए। कैसी जबरदस्त ये बात नहीं बीमारी, मगर एक तरफ जिसके पास माल नहीं है उसको इस बात नहीं बीमारी का पता ही नहीं है, ये शुरू ही जब होती है जब माल आता है। तो मर्दों को शादी के बाद इस बात नहीं बीमारी का बड़ा अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो हर वक्त फिर इंसान इसी दिमाग बस यूं ही प्रोग्राम्ड ऐसे हो जाता है कि बस सारा वक्त बस यही देख रहा होता है कि यहाँ ऐसे कपड़े हैं तो इससे बेहतर कपड़े होने चाहिए, यहाँ ऐसा घर है तो इससे बेहतर घर होना चाहिए, इसने ऐसा वेकेशन किया है मेरा इससे भी बेहतर वेकेशन होना चाहिए, ये इतना फ्रीली खर्च कर रहा है मुझे इससे ज्यादा फ्रीली, बस सारा वक्त दिमाग प्रोग्राम इसी के लिए हो जाता है, हत्ता कि इंसान कब्र में चले जाता है। ये माल के बवालों में से एक बहुत बड़ा बवाल। अल्लाह के नबी ने इसका एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन दिया है, और वो सॉल्यूशन ये आपने फरमाया कि तुम दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखो, जो सारा वक्त ये देख रहे हो ना कि इसके पास ऐसा फोन और उसके पास ऐसी गाड़ी और उसके पास ऐसा घर और यूं कपड़े और यूं वेकेशन और यूं खर्चा करते हैं, कभी ये भी देख लिया करें तो गरीब आदमी है उसके पास क्या है। तो फलस्तीन के लोगों के पास क्या है और सूडान वालों के पास क्या है ये भी देख लें, इस पे गुफ्तगू नहीं होती, कर भी नहीं सकता है जो माल की मोहब्बत में होगा। वो कहेगा बार बार ये क्या बातें सुनाते रहते हो, फला आदमी गरीब है और फला आदमी के पास कुछ नहीं है, बड़ी मुश्किल में काम जिंदगी गुजार रहा है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम यहाँ देखा करो सारा वक्त ये वाली डिस्कशंस किया करो, मगर जिसको माल की मोहब्बत होगी उसको ये डिस्कशन पसंद भी नहीं आए, वो कहते ये कैसी बातें तुम लोग कर रहे हो। फला का घर देखा है इतने हजार गज पे उसने बनाया, ये बातें पसंद आए, जब माँ एक मतलब जैन प्रोग्राम्ड हो गया है ना इस तरफ, इसलिए ये ऐसी बातनी बीमारी है कि जिसकी प्रोग्रामिंग दिमाग में ऐसी होती है कि ये कब्र तक साथ जाएगी, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। और जिसको ये बीमारी लग जाती है तो माल की मोहब्बत में तो गिरफ्तार, वो गुनाह पे गुनाह तो जरूर करता है, मगर उसकी अपनी जिंदगी अजीरन हो जाती है। इस बीमारी का लाजमी जुज ये है कि इंसान डिप्रेसिव स्टेट में जाएगा, शेख ये बयान करते हैं कि जी उनका एक सालिक मिलने वाला एक दिन राबता करता है कि हजरत पूरी रात सो नहीं सका। शेख ने पूछा भाई क्यों नहीं सो रहा? हजरत देखे ना, हम दो एक ही वालिद के बेटे हैं, उसकी गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख रुपए की है और मेरी गाड़ी जो है वो सिर्फ 80 लाख रुपए की है। इस चीज ने मुझे तकलीफ में डाल दिया है, मैं रात भर सो नहीं सका। तो जब जिंदगी का मकसद यही रह जाता है कि उसके पास क्या और मेरे पास क्या, तो फिर इस बातनी बीमारी का लाजमी जुज अल्लाह की नाराजगी भी है, दीन से दूरी भी है, आखिरत से दूरी भी है, मगर जिंदगी भी खराब हो जाती है। माल होते हुए भी, आसाइशें होते हुए भी, एक आग से गुजर रहा होता है, जहन्नम से गुजर रहा होता है इस दुनिया में। तो ये बीमारी खवातीन को ज्यादा लगती है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बस सारा वक्त इसी तरफ तवज्जो होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखा करो और दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखा करो। तो दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखा करो तो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें शुक्रगुजारी आएगी, और फरमाया दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखा करो तो तुम्हें इबादत का शौक पैदा होगा। और हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करते हैं। दुनिया के मामले में बस हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किसके पास क्या है ज्यादा, और दीन की अगर आप किसी को तरगीब दें तो वहां के साहब कहेंगे फलाह को देखा है तो कुछ भी नहीं करता है, तो आप क्यों मुझे कहते हैं? तो जिंदगी से शुक्रगुजारी चले जाती है। इस बातनी बीमारी का लाजमी जुज ये है कि इंसान डिप्रेसिव स्टेट में जाता है। तो ये ऐसी बीमारी है जो इंसान को अल्लाह से भी दूर करती है, मगर इस बीमारी का एक सबसे बड़ा बवाल ये है कि ये इंसान को खुद भी नाखुश कर देती है। पूरी जिंदगी बदहाली में, नाखुशी में, नाराज होते हुए, परेशान होते हुए गुजरती है। एक आखिरी बात, अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी सदर्न कैलिफोर्निया, वहां पे एक प्रोफेसर साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना शुक्रगुजारी पे तहकीक करते हुए गुजार दिया। उन्होंने एक तहकीक की शुक्रगुजारी पे, उन्होंने कहा कि जी 400 लोगों को हमने इकट्ठा किया, 200 लोगों का एक ग्रुप बनाया और 200 लोगों का दूसरा ग्रुप। 200 लोगों को पहला जो ग्रुप था उसको हमने कहा कि जी तुमने 8 हफ्ते तक हर हफ्ते 3 चीजें ऐसी लिखनी है जिसमें तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते। मिसाल के तौर पर तुम अच्छा सनसेट देखा, खूबसूरत मंजर देखा, तो तुम लिख सकते हो कि जी ऐसी चीज है जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते। अपनी मर्जी की कोई अच्छी चीज खा ली तो लिख दो कि जी शुक्र करने वाली चीज। बच्चे के स्कूल में ग्रेड अच्छे आए या बच्चे ने किसी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया तो लिख दो ये शुक्र करने वाली चीज। तो 3 चीजें लिखनी है, तो 200 लोगों को कहा कि हफ्ते में 3 चीजें लिखनी है। अब लिखनी तो 3 चीजें थी, मगर उनका दिमाग जो है ना वो इस शुक्र गुजारी की तरफ, वो हर रोज उनको 100 चीजें मिल जाती थी शुक्र गुजारी की। ऑफिस से घर आ गए, शुक्र गुजारी की चीज है भाई, आफियत से आ गए, बाकी एक्सीडेंट में किसी अंधे को देखा तो भाई शुक्रगुजारी आ गई कि भाई इसके पास आंखें नहीं है, मेरे पास आंखें। किसी बीमार को देखा तो ढूंढने वाला जो है उसको लिखनी तो 3 चीजें होती थी, मगर दिमाग उस तरफ चलना शुरू हो गया। 8 हफ्ते तक ही शुक्रगुजारी पे बस दिमाग चल रहा है। उनसे कहा कि जी 8 हफ्ते बाद जो है वो आपका इंटरव्यू होगा। और जो दूसरा ग्रुप था उसको कहा कि जी 200 लोग थे, उनको कहा कि जी आपने कुछ भी नहीं करना है, 8 हफ्ते बाद आपका भी इंटरव्यू होगा। अब एक ग्रुप शुक्र गुजारी करने वाला टिका के सुबह शाम बस देख ही रहा है कि क्या चीजें हैं, उसको हर रोज सैकड़ों चीजें मिल जाती शुक्र गुजारी की। उसने कहा जी 8 हफ्ते बाद जब दोनों ग्रुप्स का हमने इंटरव्यू किया तो उसमें 5 चीजें ऐसी नजर आईं जो दोनों में मुख्तलिफ थी। और उसने कहा सबसे पहली चीज ये कि जो ग्रुप शुक्र गुजारी करता था उसको नींद ज्यादा आसानी से आ जाती थी, ये सबसे पहली बात। उसने कहा दूसरी चीज ये कि जो ग्रुप शुक्र गुजारी करता था उसकी नींद ज्यादा साउंड होती थी, उसकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती थी। होता है ना बंदा सो तो जाता है मगर सोता जागता रहता है। तीसरी चीज उन्होंने की कि जी जो शुक्र गुजारी करने वाला ग्रुप था वो जब नींद से उठता था तो खुशी के आलम में, जो शुक्र गुजारी नहीं करने वाला ग्रुप था औसतन जब वो नींद से उठता तो बहुत ही नाराजगी के गुस्से के आलम में। चौथी चीज उसने कही और बड़ी हैरान कौन कि जो शुक्र गुजारी करने वाले लोग थे वो जिंदगी के बारे में भी पॉजिटिव थे कि जी अच्छा ही होगा और अच्छी ही गुजर रही है, और जो शुक्र गुजारी करने वाले नहीं थे वो जिंदगी के बारे में नेगेटिव थे कि ना अच्छी गुजर रही है ना आगे अच्छी होनी है। क्योंकि ये तो चीजें इंसान को डिप्रेस करती हैं कि भाई अच्छी गुजर भी नहीं रही, अच्छी आगे गुजरनी भी नहीं है, तो फिर इंसान जाहिर दब जाएगा। मगर पांचवी और सबसे हैरान कुन चीज कि जो शुक्र गुजारी करने वाले थे उन्होंने कहा कि जो उनको जाहिरी बीमारियां भी थोड़ी होती है, वो जाहिरी बीमारियां भी कम, और जो शुक्र गुजारी नहीं करने वाले हैं उनकी जाहिरी बीमारियां फिजिकल सिकनेसेस भी ज्यादा है। तो ये जो डॉक्टर एमन्स जिन्होंने ये रिसर्च की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, अभी आप भी देख सकते हैं ये रिसर्च पड़ी हुई इंटरनेट के ऊपर, उसने अपने इस रिसर्च पेपर के आखिर में लिखा कि इफ यू वांट टू स्लीप वेल देन डोंट काउंट शीप्स काउंट ब्लेसिंग्स। अच्छी नींद करनी है तो रात को बकरियां ना गिना करो, अल्लाह की नियमतों को गिना करो, अच्छी नींद आए। तो माल के बवाल में से बड़ा बवाल ये है कि जैसे ये माल आता है हम माल के मुकाबले में लग जाते हैं, और इस माल के मुकाबले में आखिरत को भी तबाह करना है, इस दुनिया को भी तबाह कर देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस माल के मुकाबले में से बाहर निकाले। माहौल हर तरफ जो है बस यही बना हुआ है, टॉप इकोनॉमी कौन सी है, टॉप इकोनॉमी कौन सी नहीं है, नंबर वन कौन है, नंबर टू कौन है, मुसलमान यूं नहीं सोचता है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, मुसलमान जो है वो एक और तरीके से सोचता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस दीन की सही समझ नसीब फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.